हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अगली सुबह, गुजरात, निमानी हाउस। रुहान गहरी नींद में सो रहा था जब अचानक उसके कानों में चूड़ियों की झनझनाहट की आवाज आई और उसने कसम साते हुए अपनी आंखें खोलकर सामने देखा। अनाही ने नीले रंग की साड़ी पहनी थी और उसमें वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, इतनी कि रुहान की एक झलक में ही पूरी नींद गायब हो चुकी थी। उसकी नज़र शीशे में अनाही के खूबसूरत चेहरे से होती हुई उसके होठों पर टिकी पानी की बूंदों पर और उसके बाद उसकी गर्दन से फिसलती पानी की बूंदें उसके क्लीवेज में जाते हुए कहीं गुम हो रही थीं, जिसे देखकर रुहान ने अपना जबड़ा कस लिया। उसके बाद उसकी नज़र अनाही की कमर पर गई। अनाही अपनी प्लेट को ठीक कर रही थी। वहीं अनाही को जैसे ही खुद पर किसी की नज़रों की तापिश महसूस हुई, उसने झट से सामने शीशे में देखा और रुहान को खुद को इस तरह देखना पाकर वो जल्दी से अपनी साड़ी को ठीक करते हुए मुड़कर बोली, रुहान जी, गुड मॉर्निंग। अनाही शायद कुछ और बोलना चाह रही थी, लेकिन रुहान के सामने उसकी जबान चल गई थी। उसने जल्दी से अपनी साड़ी को और भी ज्यादा ठीक किया और फिर अपने गीले बालों को सुखाते हुए बोली, आज आप जल्दी उठ गए, कल तो मैं रेडी हो गई थी, उसके बाद आपकी नींद खुली थी। रुहान अनाही की आवाज सुनकर होश में आने की कोशिश कर रहा था। उसने आंखें बंद करके दो तीन बार अपने सर को झटका और फिर झट से आंखें खोलकर सामने देखते हुए बोला, गुड मॉर्निंग मैडम जी, मुझे तो लगा था आपको टॉकिंग फोबिया है, लेकिन नहीं, आपकी जबान भी चलती है। इतना बोलकर रुहान बेड से उठा और अपने सर को खुजाते हुए वॉशरूम की तरफ पड़ गया। अनाही को समझ नहीं आया कि रुहान किस बारे में बात कर रहा था। वहीं रुहान अंदर जाकर ब्रश पर टूथपेस्ट लगाते हुए खुद में बड़बड़ा रहा था, कल शाम को मुझसे एक शब्द नहीं कहा, मैं पूरे दिन उनका इंतजार कर रहा था कि शायद वो ऑफिस से जल्दी आएंगी, लेकिन नहीं, मैडम लेट आई, उसके बाद मुझे खाने का नहीं पूछा और उसके बाद शाम को आकर भी बात करने की बजाय सीधा सोने चली गई और अब देखो सुबह उठते ही कैंची जैसी जबान चल रही है। वहीं अनाही को इतना बोलने की आदत नहीं थी, लेकिन जो ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट हो चुकी थी उसको दूर करने के लिए उसके पास बोलने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। अनाही अपनी बिंदिया के डिब्रे में मैचिंग बिंदी ढूंढते हुए रुहान के इस अजीब बिहेवियर के बारे में सोच रही थी। फिर उसने झट से वो बिंदी अपने माथे पर लगाते हुए कहा, ये मर्द लोग बहुत धीरे धीरे समझ आते हैं, कुकिंग फोबिया का क्या मतलब हुआ? फिर बोलने से मुझे कब डर लग रहा था और मैं कब नहीं बोली? मुझे तो लगता है मैं जितना नॉर्मली बोलता हूँ उतना ही मैं रुहान जी के साथ बोलती हूँ। अनाही फिर पिछले तीन दिन के सारे मोमेंट्स को एक एक करके याद कर रही थी और साथ ही साथ अपना हल्का फुल्का मेकअप कर रही थी, फुल लिप ग्लॉस लगा रही थी कि अचानक उसे समझ आया कि कल रात सच में उसने रुहान से बात नहीं की थी, पर उसके पास बहुत सारे रीजन थे, जैसे कि उसे लग रहा था रुहान शायद पूरे दिन बाहर घूमकर बहुत थका हुआ होगा और उसे अपने रेस्टिंग टाइम में अनाही का डिस्टर्बेंस पसंद नहीं आएगा। ये सब सोचकर ही तो अनाही रुहान से दूरियां बना रही थी। वो पहले दिन वाली धमकी, वो गुस्सा वाली आंखें, ये सब अनाही को रुहान की सबसे बड़ी इमेच्योर आदतें लगी थीं जिसे वो बचकर रहना चाहती थी ताकि उन दोनों के रिश्ते के बीच ज्यादा लड़ाइयां ना हों। लेकिन रुहान तो किसी छोटे बच्चों की तरह बिना बात भी मुंह फुला सकता था, ये अब धीरे धीरे अनाही को समझ आ रहा था। उसने अपनी मांग में सिंदूर लगाया और फिर जल्दी से कमरे से बाहर चली गई ताकि रुहान के लिए कॉफी बना सके। वहीं रुहान भी नहाकर बाहर आया। उसने ब्लू कलर की वी नेक वाली शर्ट पहनी थी और उसके नीचे व्हाइट कलर का ट्राउजर। वो गीले बालों को पोंछते हुए कमरे के अंदर आया था और अब उसकी नज़रें पूरे कमरे में घूम रही थी, शायद अनाही की तलाश कर रही थी, लेकिन उसे कहीं भी अनाही नज़र नहीं आई और उसका मुंह एक बार फिर लटक गया। फिर उसने खुद से सोचते हुए कहा, क्या मैं ज्यादा बोल दिया? वो इतना सोच ही रहा था कि उसके कमरे में कदमों की आहट हुई और रुहान का उदास चेहरा एकदम से अकड़ से भर गया। उसने पूरे एटीट्यूड के साथ एंट्रेंस की तरफ देखा, लेकिन वहां अनाही की जगह माधवी को देखकर उसके चेहरे पर एक बार फिर चिढ़न वाले एक्सप्रेशन आ गए, जिन्हें माधवी ने तुरंत नोटिस कर लिया था और आज वो कल से भी ज्यादा शॉक हुई थी। वो अपने हाथों में पड़ी कॉफी सामने आकर रुहान की तरफ बढ़ते हुए बोली, गुड मॉर्निंग बेटा, क्या हुआ? आज सुबह सुबह ही तुम्हारा मूड बहुत खराब लग रहा है। रुहान ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं ताई जी, आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है, गुड मॉर्निंग। एक्चुअली कॉफी लेने मैडम जी गई थी और देने के लिए आप आई हैं, तो बस थोड़ा शौक हुआ था और कुछ नहीं है। माधवी ने धीरे से कहा, और तुझे किसने कहा कि अनाही तेरे लिए कॉफी लेने गई है? वो तो अपना टिफिन रेडी कर रही है और साथ में वेदांत का भी। वो दोनों साथ ऑफिस जाते हैं ना, और वो इतना सब कर रही थी, उसमें कहाँ उसे ध्यान रहेगा कि उसके हस्बैंड को कॉफी देनी है। ऐसे उसकी भी गलती नहीं है, आजकल की वर्किंग वुमेन ऐसी ही होती है। एक टाइम पर इंसान एक ही चीज पर फोकस कर सकता है, या तो रिश्ते पर या फिर काम पर। और अनाही बाकी परिवार वालों के साथ बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन मुझे लगता तुम्हारा ख्याल रखने के लिए उसे ऑफिस से थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा। मैं उससे जरूर इस बारे में बात करूंगी, लेकिन मेरा बेटा बिना कॉफी पिए थोड़ी रह सकता है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाकर ले आई। फिर माधवी ने रुहान का सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अभी कर बताओ कॉफी कैसी बनी है। रुहान ने मुस्कुराकर कॉफी का एक सिप लिया, उसकी आंखों में कन्फ्यूजन आ गया। उसने धीरे से कहा, ताई जी ऐसी कॉफी कल मैडम जी ने बनाई थी, ठीक वैसा ही टेस्ट आ रहा है। मैंने कल पहली बार वैसी कॉफी पीते, उससे पहले कभी नहीं, और आज फिर वही टेस्ट है। क्या सच में ये कॉफी आपने बनाई है? रुहान की बात सुनकर माधवी सक पका गई, लेकिन फिर उसने जल्दी से अपने चेहरे पर उदासी वाले एक्सप्रेशन लाते हुए कहा, तू अपनी ताईजी पर शक कर रहा है, हो सकता है कॉफी पाउडर चेंज हुआ होगा अनाही के आने के बाद, इसलिए तुम्हें लग रहा होगा कि ये से टेस्ट है, तुम मुझे झूठ बोल रहे हो। इतना बोलकर माधवी को देखकर लग रहा था वो अब रोने की वाली है। रुहान ने जल्दी से कहा, आई एम रियली सॉरी ताईजी, मेरा वो मतलब नहीं था, और आप सही बोल रही हो सकता है कॉफी पाउडर ही चेंज हुआ होगा, जिस वजह से ही ऐसा टेस्ट आ रहा है, और कभी बहुत अच्छी बनी है, आप प्लीज उदास मत होइए। रुहान की ये बात सुनकर माधवी मुस्कुरा उठी और झूठ मूठ अपनी आंखों के कोने पोंछते हुए बोली, मेरा बेटा तो दुनिया का सबसे अच्छा बेटा है, वो कभी अपनी ताईजी को ऐसा नहीं बोल सकता है, मुझे भी माफ कर दे जो मैंने तुझ पर ही इल्जाम लगाया, अब मैं चलती हूँ, ठाकुर जी की पूजा भी करनी है। इतना बोलकर माधवी तेज कदमों से रुहान के कमरे से निकल गई, क्योंकि वहां कुछ देर और रहती तो शायद रुहान अपनी इन्वेस्टिगेशन फिर से शुरू कर देता, जो माधवी के लिए काफी घातक हो सकती थी। रुहान ने कॉफी को देखते हुए कहा, क्या आपके पास सच में टाइम नहीं है मैडम जी? क्या आप मुझे एक कॉफी का कप बनाकर दे सको? वैसे मैं भी यही मानता हूँ कि किसी को ये हक नहीं देना चाहिए कि वो तुम्हें ऑर्डर दे पाए, चाहे वो तुम्हारा खुद का पति ही क्यों ना हो। मेरे भी हाथ सही सलामत हैं, मैं भी बना सकता हूँ, पर एक बार उम्मीद देकर जब कोई उम्मीद तोड़ता है तो बुरा बहुत लगता है। इतना सोचकर रुहान ने गहरी सांस ली और फिर अपना फोन उठाकर किसी को कॉल करते हुए कहा, 8 बजे अड्डे पर पहुंच जाना, आज का काम बिल्कुल डिले नहीं होने वाला है, कल मैं लीव ले ली थी पर आज ऐसा कुछ नहीं होगा।
सामने से किसी ने हंसते हुए कहा, गुड बॉय, हम जल्दी मिलते हैं। सामने वाले की बात सुनकर रुहान ने फोन रख दिया और फिर अनाही के एक बार फिर कमरे के अंदर आने का इंतजार करने लगा, क्योंकि वो अपना पर्स नहीं लेकर गई थी। इसका मतलब था कि अनाही एक बार फिर कमरे के अंदर जरूर आएगी।